काफी सारे लड़ाई झगड़े और बहस के बाद आरव ने आयु को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की इजाज़त दे दी थी। अयान और गौरवी जी भी वहीं थे। जहां आरव के इस फैसले से आयु और गौरवी जी खुश थे, तो वहीं अयान के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अयान को कुछ कहने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आरव ने आयु से अकेले में बात करने के लिए उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह दिया था। गौरवी जी और अयान के जाने के बाद कमरे में बस आरव और आयु ही बचे थे। आरव के साथ अकेले होने पर आयु के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। आयु ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, आरव, वो मैं दादी और अयान को। आरव समझ गया था आयु क्या कहना चाहती है। उसने आयु की बात बीच में काटते हुए कहा, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे आयु। बोलते हुए आरव ने आयु को दोनों हाथों से पकड़ा और बेड पर बैठा दिया। आरव आयु के पास नीचे घुटनों के बल देखा और धीरे से कहा, खाना खाया तुमने? आयु ने बिना कुछ कहे ना में सिर हिला दिया। उसे लगा आरव उसे इस बात के लिए डांटेगा कि उसने गौरवी जी और अयान के सामने अपनी प्रेगनेंसी रिवील कर दी थी। आयु आगे कुछ कहता उससे पहले आरव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तुम्हें ऐसी हालत में ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए, स्पेशली तब जब बच्चे ट्विन्स होने वाले हों। अपनी बात कहकर आरव नीचे खाना लाने के लिए चला गया। वहीं उसकी हर एक बात आयु को हैरान कर रही थी। आरव के जाते ही आयु ने खुद से कहा, ये इस खुडूस खुराना को क्या हो गया? ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? इसे तो मुझे डांटना चाहिए। पहले तो लड़ रहा था और अब कुछ ज्यादा ही प्यार से बिहेव कर रहा है। कहीं खाने में कुछ मिलाकर तो नहीं दे देगा? नहीं, आरव ऐसी चीप हरकत भी नहीं कर सकता। जरूर मुझे कल साथ हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कन्वेंस करना चाहता होगा, इसलिए एक्स्ट्रा केयर कर रहा है। तुम कुछ भी कर लो आरव, लेकिन मैं नहीं मानने वाली हूँ। मुझे अपनी लाइफ में मेरे बच्चे भी चाहिए और उनके डैड भी। आयु वहीं बैठकर आरव के आने का इंतजार करने लगी। वहीं आरव आयु के लिए खाना लाने के लिए नीचे पहुंचा। गौरवी जी और अयान आरव के आने का ही वेट कर रहे थे। आरव को देखते ही अयान तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और उसके पास जाकर कहा, भाई प्लीज गलती मत कीजिए, वो बचपना कर रही है, लेकिन आपको तो समझना होगा। डॉक्टर मानसी कुछ भी कहे, लेकिन वो आयु की हालत नहीं संभाल पाएगी। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। आरव ने अयान की बातें गौर से सुनी और फिर जवाब में कहा, तो तुम किस लिए हो अयान? अब तक उसका इतना ख्याल रखा है तो आगे भी तुम्हें ही देखना होगा। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। देख नहीं रहे थे कि कैसे बच्चों की तरह जिद कर रही थी? वो अबॉर्शन कराने के लिए कभी नहीं मानेगी और मुझे कुछ भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करना। बोलते हुए आरव की आंखें नम होने लगी। उसकी वजह से आयु आज तकलीफ में थी। अयान ने आरव की आंखों में देखा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई मैं आपके इमोशन समझ सकता हूँ। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो मैं भी उतना ही खुश होता जितना आप हो रहे हो। आपको इस वक्त प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। मैं क्या, दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसकी कंडीशन को नहीं संभाल पाएगा। हम उसे खो दोगे भाई, तो प्लीज़ ये गलती मत करना। मुझे पता है तुम उसे संभाल लोगे। हम दोनों ही उसे नहीं खोएंगे। मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। आगे इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हें बता नहीं रहा, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। तुम्हें उसकी कंडीशन संभालनी होगी, आरव ने सख्ती से कहा और बातचीत को वहीं ख़त्म करते हुए आगे कहा, उसने आज ठीक से खाना नहीं खाया। रिपोर्ट्स आने वाली थी, इस वजह से पहले से ही स्ट्रेस्ड होगी। ऊपर से बाद में ये सब हो गया। सॉरी जो मैं तुम दोनों की सगाई में नहीं रुक पाया। फिलहाल मुझे मेरी मिसेस खुराना के लिए खाना लेकर जाना है। कहकर आरव किचन एरिया की तरफ जाने लगा। आरव के जाने के बाद अयान ने गौरवी जी की तरफ देखा। अयान ने नामे सिर हिला दिया था। इसका मतलब ये था कि आरव उसकी बात नहीं समझा है। नीचे आने के बाद अयान ने गौरवी जी को आयु की पूरी मेडिकल कंडीशन के बारे में बता दिया था, जिसके बाद वो भी अयान की बातों से सहमत थीं। अयान गौरवी जी के पास आया तो गौरवी जी ने इमोशनल होकर कहा, पता नहीं कैसा बुरा टाइम चल रहा है, जो इतनी बड़ी खुशी आने पर भी चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय आंखें नम हो रही हैं। मेरा आरव बाप बनने वाला है और मैं परदादी। अयान, हमारे खुराना फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, फिर भी हम ठीक से खुशी भी नहीं मना पा रहे हैं। गौरवी जी कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही थी। इससे उनकी तबीयत न बिगड़ जाए, इसलिए अयान ने उन्हें काउच पर बैठा दिया। वो उनके पास आकर बैठा और गौरवी जी का हाथ सहलाते हुए कहा, आयु तो जिद्दी थी ही, अब भाई भी जिद कर रहे हैं। दोनों को ही समझना इम्पॉसिबल है। अब तो बस दुआ कीजिए दादी कि कोई चमत्कार हो जाए और दोनों बच्चे इस दुनिया में सही सलामत आ जाए, साथ में आयु को भी कुछ न हो। आखिर में अयान को ही हथियार डालने पड़े। जिस तरह आयु के रोने पर आरव कन्विंस हो गया था, वैसे ही आरव के सख्ती से कहने पर अयान को भी उनकी बात माननी पड़ी। अयान ने कुछ देर सोचने के बाद गौरवी जी से कहा, बहुत मुश्किल होने वाला है दादी, पर कोशिश यही रहेगी कि मैं आयु को कुछ ना होने दूं। आप स्ट्रेस मत लीजिए, आपकी भी हेल्थ खराब हो जाएगी। चलिए सोने जाइए। अयान गौरवी जी को उनके कमरे में लेकर गया और फिर उन्हें लेटाकर अपने घर चला गया। वहीं दूसरी तरफ आरव खाना लेकर कमरे में पहुंचा। आरव को अपने सामने देखकर आयु खुद में ही सिमटने लगी तो आरव वाइज रोल करके बोला, कमॉन मिसेस खुराना, अब तो ये अजनबियों वाला बिहेव मत रखो, सब सच पता चल गया है मुझे और अब तो मैंने परमिशन भी दे दी है, चलो आओ अब कुछ खा लो। बोलते हुए आरव आयु के पास पहुंचा और उसे खाना खिलाने लगा। आयु आरव से उस बारे में बात करना चाहती थी लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा था कि कहीं आरव उससे वापस गुस्सा ना हो जाए। अगर आरव को गुस्सा आ गया तो वो फिर से उसे अबॉर्शन कराने का कहेगा, जो आयु से कभी नहीं होगा। आयु बिना कुछ बोले चुपचाप आरव के हाथ से खाना खा रही थी। खाना खत्म हो जाने के बाद आरव ने आयु के चेहरे की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, जानता हूँ मिसेस खुराना, इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बहुत कुछ सोच रही होगी ना कि मैंने अचानक से तुम्हें परमिशन क्यों दे दी, जबकि पहले इसी बात के लिए हम दोनों ने इतनी देर तक झगड़ा किया था। आयु जो आरव से कहना चाहती थी वो उसने खुद ही कह दिया। आयु ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जब सब पता ही है तो खुद ही क्यों नहीं बता देते, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा ना अब तुम्हारे दिमाग में। मैं पहले ही कह रही हूँ, मैं अपने बच्चों को खुद से अलग कभी नहीं करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना। आयु की बात पूरी होती उससे पहले आरव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी थी और सर्द निगाहों से उसे देखने लगा। पहले भले ही आयु को आरव की इन सर्द निगाहों से डर ना लगता हो लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। आरव जिस तरह उसे देख रहा था उसे महसूस करते हुए आयु उससे पीछे खिसकने लगी कि तभी आरव ने उसे पकड़ा और अपने करीब खींच लिया।
आरव सर्द निगाहों से आयु की तरफ देख रहा था जिससे आयु उसे दूर खिसकने लगी। आरव ने आयु को पकड़कर अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या लगता है मिसेस खराना, मुझे अपने बच्चों से प्यार नहीं है या तुमसे नहीं है? प्यार है तभी हाँ कही है, तो इसका कुछ और मतलब मत निकाल लेना। हर बात की तरह जिद करके तुमने हाँ तो करवा ली है लेकिन अपनी हेल्थ को लेकर अगर जरा भी केयरलेस रही तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, आरव ने सीधे सीधे धमकी दी। आयु ने पलके झपकाते हुए आरव की बात पर हामी भरी और मासूमियत से कहा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। वो वादे नहीं करने चाहिए मिसेस खुराना जो आप निभा ना सको, तुम्हें हर बार अपनी जिद करनी होती है तो ये मत कहो कि तुम मेरी बात मान लोगी, तुम भी जानती हो कि तुम नहीं मानती हो, आरव ने हल्का हंसकर कहा जिससे उसके गाल पर डिम्पल उभर आए। आयु ने झट से आरव के डिम्पल पर किस किया और फिर बोली, आई लव यू मिस्टर खुराना। आई लव यू टू मिसेस खुराना, पर ये बताओ कि तुम मुझे ये प्रेगनेंसी की बात आखिर बताने कब वाली थी? पहले तुमने प्लान किया था कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पर बताओगी लेकिन रिपोर्ट तो अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं है, आगे क्या करने का प्लान था तुम्हारा? आरव ने हैरानी से पूछा। आयु ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब में कहा, फिर मैं 2 महीने और वेट करती, जब अबॉर्शन का ऑप्शन नहीं रहता तब तुम्हें आकर बताती। अच्छा, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, आरव मुंह बनाते हुए बोला। ट्विन होने की वजह से ऑलरेडी तुम्हारा वेट गेन हो गया है, सोचो कुछ दिन और वेट करती तो तुम्हारा वजन और बढ़ जाता और मैं झट से पहचान लेता। बोलते हुए आरव की आंखों में फिर से वही दृश्य आने लगा जब उसने अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए अपने बच्चों को पहली बार देखा था। आरव ने भले ही आयु को बताया ना हो लेकिन यह एहसास उसके लिए खास था, बहुत ज्यादा खास। वो आयु के पास से थोड़ा दूर हुआ और फिर उसके साड़ी का पल्लू साइड करते हुए उसके पेट को देखने लगा। आरव ने आयु के पेट को देखते हुए हल्का मुस्कुराकर कहा, सो तुम ट्विन्स हो, थैंक्स टू योर मॉम के उनके जीन्स की वजह से आपको एक साथ आने का मौका मिल रहा है। अच्छा, आप अपनी मासी की तरह मत करना वरना पूरी लाइफ आपके सिबलिंग को प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों एक जितना ही ग्रो करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ना कि सिर्फ खुद को जल्दी ग्रो करके आगे बढ़ाने की। आरव की बातें सुनकर आयु ने आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा और उसे मारते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो आरव, पहली बात तो यह है कि ये बच्चे अभी सुन नहीं सकते और अगर सुन भी सकते तो तुम क्या उन्हें ऐसी बातें बताते? हाँ तो इसमें बुरा क्या है, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ यही किया था, तुम दोनों इक्वली ग्रो हुई होती तो आज हम दोनों के बीच में ये लड़ाई नहीं होती, तुम भी फिजिकली स्ट्रांग होती, आरव ने कंधे उचकाते हुए कहा, जिस पर आयु ने सार्कास्टिक वे में सिर हिला दिया। उसके बाद आरव ने मुस्कुराते हुए आयु को अपने सीने से लगा लिया। आरव की आंखें बंद थी और उसने धीरे से कहा, इन 2 महीनों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मिसेस खुराना, जिद तो तुम अभी भी कर रही हो और तब भी कर सकती थी, तो मुझे पहले बता देना चाहिए था। सच कहूँ तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को और भी अच्छे से इन्जॉय करना था, पर क्या कर सकते हैं। इन दोनों के साथ होने पर हमारे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पहले ही इनकी वजह से हमारे बीच इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आरव आज इतने दिनों बाद आयु से अपने दिल की बात कह रहा था। आरव से सच छुपाने के चक्कर में आयु ज्यादातर आरव से दूर रहने लगी थी। अब सब सही था तो आयु के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। वो उसी अंदाज में बोली, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया आरव। तुमसे सब छुपाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन मुझे हर पल तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती थी। मूड स्विंग्स होते थे, गुस्सा आता था, रोने का मन करता था, पर तुम नहीं थे मुझे प्यार से संभालने के लिए। लेकिन अब तो हूँ, आई प्रॉमिस आयु, हर तरीके से तुम्हारा ख्याल रखूँगा और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, आरव ने आयु को सहलाते हुए कहा। रात काफ़ी हो गई थी तो आरव ने आगे बात नहीं की। उसने आयु की ड्रेस चेंज करने में हेल्प की और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। कुछ ही देर में आयु को नींद आ चुकी थी, जबकि आरव अभी भी जाग रहा था। वो उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। फाइनली यू आर बैक, माई मिसेस खुराना इज़ बैक, मैंने तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा मिस किया, बोलते हुए आरव थोड़ा इमोशनल होने लगा। उसने आयु के फोरहेड पर किस किया और लाइट बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि तभी आरव के मोबाइल की रिंग बजी। ये कबीर का कॉल था, इसलिए आरव इग्नोर भी नहीं कर सकता था। मोबाइल की रिंग सुनकर आयु उठ ना जाए, इसलिए आरव ने जल्दी से कॉल पिक किया और तेज कदमों से चलकर बाहर बालकनी में गया। आरव ने कॉल रिसीव करते ही कहा, रात के दो रहे हैं कबीर, और ये कोई टाइम नहीं होता कॉल करने का। जानता हूँ ये कोई टाइम नहीं है और मैंने आपको डिस्टर्ब भी किया होगा, लेकिन बात कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी थी। मुझे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना, सीधे सीधे बात को घुमाए फिराए बिना ही बता देता हूँ कि बात अनुष्का सिंह ओब्रॉय की मौत से जुड़ी हुई है, मुझे कुछ पता चला है, कबीर ने सीधे सीधे कहा। बात सच में काफ़ी ज़रूरी थी, इसलिए आरव ने उसे इस मामले को लेकर डांटा नहीं। वहीं अनुष्का की मौत का सुनकर आरव भी चौंक गया। अनुष्का की मौत उसकी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करती थी, उसी की वजह से आयु उससे मिली थी और अनजाने में ही सही वो आरव को अनु की मौत का जिम्मेदार समझती थी। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, मुझे उसके कातिल का नाम जानना है, उस इंसान की वजह से मेरी लाइफ उथल पुथल हो गई थी, मुझे इस तरह कॉल पर बात नहीं करनी, तो जहाँ भी हो घर आ जाओ। अपनी बात कहकर आरव ने कॉल कट कर दिया, तो वहीं कबीर भी आरव से बात करने के लिए तुरंत खुराना मेंशन के लिए निकल गया।